ओम शांति। 16 जनवरी 1969 बड़ी दादी गाम देवी से मधुबन आए ग्रुप लेकर और बाबा ने उनको यही रहने को कहा और पार्टी को भेज दिया और दीदी को इलाहाबाद भेज दिया। 18 जनवरी सुबह की क्लास नहीं हुई, 9 बजे से लगभग 12-1 बजे तक बाबा ने बहुत सारे खत जो आए थे उनका जवाब दिया, लगभग 40-50, और बड़ी दादी को मधुबन की सैर कराई और एक एक डिपार्टमेंट भंडारा सब कुछ दिखाया। शाम को रात्रि क्लास 9 बजे होता था, परंतु ठंड थी तो 8:30 बजे चालू हुआ। आधा घंटा क्लास हुआ हिस्ट्री हॉल में, क्लास पूरा किया बाबा ने और 3 शब्द उच्चारण किए दरवाजे पर, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, और विदाई ली। कमरे में गए, दादी साथ में, हाथों में हाथ, और बाबा अव्यक्त हो गए। अगले 2 दिन विश्व भर के, या कहो मुख्य रूप से भारत के, विश्व तो भी हुआ नहीं था, सभी ब्राह्मण वत्स मधुबन आ गए और उस रात दादी ने सबको फोन करके बुलाया। 21 जनवरी 69 अंतिम संस्कार हुआ, सरकार से अनुमति लेकर शांति स्तंभ के पास, और सबसे पहली अव्यक्त वाणी चली। अव्यक्त वाणियों की जो धारा, अव्यक्त धारा बहने लगी, यज्ञ इतिहास की फर्स्ट मुरली, फर्स्ट अव्यक्त वाणी, और वो वाणी थी 21 जनवरी की। उस वाणी की बहुत सारी विशेषताएं, उस वाणी में बाबा ने डायरेक्शंस दिए आगे क्या होगा, क्या करना है, यज्ञ कैसे चलेगा, क्योंकि सभी ने सोचा था ब्रह्मा तो अंत तक चलेंगे, परंतु ब्रह्मा तो गया, अब आगे क्या होगा। तो आज सुबह की जो अव्यक्त वाणी है 18 जनवरी 84 की, पर हम क्लास की शुरुआत करेंगे 18 जनवरी 21 जनवरी 69 की अव्यक्त वाणी से, जिसमें बाबा ने बहुत सी बातें कही है, बहुत से डायरेक्शंस दिए हैं और कहा है कि अब तक जो भी तुमने सुना देखा वो समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अब अव्यक्त स्थिति बनाओ, अभी अंतर्मुख हो जाओ, अभी एकमत हो जाओ। उस मुरली में आगे क्या क्या होगा और कैसे कैसे छप चलेगा, उसका सब कुछ है। बाबा ने कहा हलचल का सागर, ये अचानक का पेपर था और उसमें बहुत थोड़े पास हुए, लगभग 12 से 14 इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस यज्ञ के दिए थे। सबसे पहला, क्लास जैसी चलती थी वैसी ही चलेगी। मुरलिया जैसी चलती थी वैसी ही चलेगी। स्थापना का आधार ब्रह्मा था, पालना का आधार भी ब्रह्मा ही होगा अंत तक। ब्रह्मा का ही शरीर मुकरर है, वही शरीर के द्वारा मुरलिया चलेगी। मधुबन से वैसी ही पोस्ट सभी सेवा केंद्र पर जाएगी। बाबा ने कहा है कि क्या तुमको एक साल पहले की चली हुई मुरली याद है? और बाबा ने खुद उत्तर दिया है, एक दिन पहले की भी याद नहीं होगी, इसलिए अब तुम्हें सारी मुरलियां रिवाइज करनी है। क्योंकि कुछ कुछ बातें मुरलियों में जो आती है, कई बार पढ़ने के बाद भी बुद्धि में नहीं ठहरती। तो काम दिया कि अब से तुम्हें मुरलियां रिवाइज करनी है। मधुबन में वैसी ही पार्टी आती रहेगी, नई फुलवाड़ी के नए फूल आते रहेंगे। जो यज्ञ की निमित्त आत्माएं बाबा ने मुकरर की, उसमें कहा कि सब जानते हैं दीदी तो होगी, परंतु साथ में कुमार का मददगार होगी। उसके बाद में संदेशियों द्वारा जो मुरलियां चलेगी, उन मुरलियों में जादू नहीं, जो बाप दादा की मुरली है उसी मुरली में जादू है। संदेशिया कौन होगी, किनके द्वारा रहस्य प्रकट होगा, इसका निर्णय दीदी और दादी करेंगे। ध्यान दीदार का जो पार्ट है अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये अब तुम ब्राह्मणात्माओं को शोभता नहीं, ये सारे बाबा के महावाक्य है। इसलिए ध्यान दीदार धीरे धीरे कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर आवश्यकता पड़ी तो दीदी दादी सभी सेवा केंद्र पर चक्कर लगाएंगे। बाकी यदि सेवा केंद्र की कोई समस्या है तो यहां आए या दीदी दादी से संपर्क करें, संबंध के आधार पर उन समस्याओं का हल लेना, सेल्वेशन लेना। और फिर कहा कि दो चीजों का दान तुम्हें देना है। और भी कुछ दूसरी बातें थी, उसके पहले तुमसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि तुम तो कहते थे कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है, फिर ये कैसे हो गया? तो क्या उत्तर देंगे? लगभग तो उतनी ही थी और जो बचा कुचा है वो आकार ही रूप में पूरा करेंगे। वो रचता है, उसकी ये रचना है। और दो चीजों का दान करना है। लोग पूछेंगे, अब देखेंगे तुम्हारी संस्था का क्या होता है। बाबा ने इस मुरली की शुरुआत निश्चय से की है, निश्चय की परिभाषा बताई है। कितनी भी हलचल आ जाए या ब्रह्मा भी चला जाए तो भी नींव मजबूत हो। नींव है बाप, नींव है संगठन, नींव है श्रीमत। तो दो चीजों का दान, एक तो सदा अचल अडोल रहेंगे, अंगत समान, पाव न हिले निश्चय का, और दूसरा एक दूसरों के अवगुणों को न चित्त पर रखेंगे, न देखेंगे न धारण करेंगे। और फिर अब तुमको याद की यात्रा में रहना है। और तुम कहते हो तुम्हारा बाप से प्यार है, ब्रह्मा से प्यार है, परंतु ब्रह्मा को प्यार किससे था? सेवा से। तो अब तुम्हें सेवाएं करनी है, सेवाओं का विस्तार करना है। तो ये सारे डायरेक्शंस लगभग 14-21 जनवरी 1969 की मुरली में, जो कि अव्यक्त धारा की पहली अव्यक्त धारा है, फर्स्ट अव्यक्त वाणी जो चली, जिसमें बाबा ने बार बार कहा अब तुम्हें अंतर्मुखी होकर याद की यात्रा पर रहना है, सबूत देना है प्यार का। और इस मुरली से पहले कुछ अव्यक्त संदेश है, उन संदेशों में ब्रह्मा की आंतरिक स्थिति क्या थी उसका भी वर्णन आया है। हिमालय क्षेत्र में यदि कोई जाए तो ऐसी कहानी है कि वहां पर एक आवाज गूंजता रहता है, हिमालय की घाटियों में, पर्वतों में, झील में, झरनों में, जैसे कोई पक्षी गा रहा है और वो कहता है जूहो जूहो जूहो। ये जूहो जूहो का क्या अर्थ है? उसके साथ वो लोग एक लोक कथा सुनाते हैं, वो पहाड़ी लोग, वो आदिवासी लोग, वो कहते हैं कि बहुत समय पहले हिमालय में एक अत्यंत रूपवती कन्या थी, जो बचपन से पहाड़ों में पली, जो बचपन से पहाड़ों में रही, झील और झरने और ठंडी हवाएं उसका जीवन था, और वहां की नदियां और वहां का सौंदर्य उसका जीवन था। परंतु उसके पिता बहुत गरीब थे और इसलिए उसका विवाह उन्होंने मैदानी क्षेत्र में किसी युवक से कर दिया। वो मैदानी क्षेत्र में आई परंतु वो पहाड़ वहां न थे, वो झरने वहां न थे, वो हरियाली वहां नहीं थी, वो हिम आच्छादित शिखर, हिम शिखर वहां न थे। बरसात तो कट गई, सर्दी आई और सर्दी के बाद फिर गर्मी, और सूरज अपनी आंख उगलने लगा और वो परेशान होने लगी और उसे समझ में नहीं आने लगा क्या करूं। ऐसी बेचैनी होने लगी, उसे याद आने लगी उस अपने घर की जहां वो पली पड़ी थी, और फिर वो अपनी सास से पूछने लगी जूहो जूहो। पहाड़ी भाषा में इसका अर्थ होता है मैं जाऊं, क्या मैं अपने घर जाऊं? तो सास ने तो पहले मना कर दिया नहीं, परंतु बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसकी हालत बहुत खराब होने लगी, उदास रहने लगी, दुखी रहने लगी और बेचैनी थी, और वो गर्मी उसे सहन नहीं होती थी क्योंकि उसने ऐसी गर्मी कभी देखी नहीं थी। वो फिर अपनी सास से पूछने लगी जूहो जूहो, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं? फिर सास ने कहा कल जाना, आज नहीं। और जब दूसरा दिन आता था और वो तैयारी करती थी जाने की, फिर उसकी सास कहती थी आज नहीं कल जाना, और वो कहती थी जूहो जूहो जूहो, मैं जाऊं मैं जाऊं मैं जाऊं। पर हर दिन उसकी सास टाल देती थी आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना। जाग बोला, जाग बोलो, पहाड़ी भाषा में उसका अर्थ था कल जाना। और एक दिन ऐसा आया कि वो मृत पाई गई एक झाड़ के पास, वो मर गई, और उसी झाड़ पर एक पक्षी था और उसने उसकी आवाज सुनी थी जुहो जुहो जुहो, और ऐसी किवदंती मान्यता लोकोक्ति है कि वो पक्षी अभी भी हिमालय में गूंज रहा है, घूम रहा है, गाता रहता है जुहो जुहो जुहो। मनुष्य के मन में भी ऐसी ही एक पुकार है, उसे भी कहीं जाना है। ये धरती हमारी नहीं है, ये संसार हमारा घर नहीं है, हम कहीं और से आए हैं, किसी और स्थान से, समय से पार जो है। और वो पुकार हर हृदय में है, वो प्यास हर हृदय में है कि यहां से जाऊं कहीं और। और जब तक ये प्यास नहीं मिटेगी, जब तक वो उस स्रोत तक नहीं पहुंचेगा, इस देह से पार नहीं चला जाएगा, बेचैन रहेगा, तड़पता रहेगा, दुख में रहेगा, यहां के सुख सुख नहीं, ये संसार अजनबी है, ये संसार, ये धरती, ये जगत हमारा नहीं है, हम कहीं और के हैं। वो घर हमें पुकारता है। जब ऐसी प्यास चेतना में उठेगी, तब खींच होगी इस संसार से बाहर जाने की। अव्यक्त संदेश नंबर 7। जो अव्यक्त संदेश चले उसमें संदेश नंबर 7 ब्रह्मा बाबा से पूछा गया, बाबा बाहर की स्थिति तो हम जानते हैं, कैसे आपने शरीर छोड़ा, हाथों में हाथ और बाबा व्यक्त हो गए, बाबा को लिटा दिया गया, डॉक्टर को बुलाया गया, कोई सिंधी भाई, और उसने कहा बाबा तो गए, कोई मानने को तैयार नहीं, दादी ने रात भर फोन किए कि बाबा गए। बाहर की सीन तो सबको पता है, बाबा से प्रश्न में पूछा गया, बाबा अंदर क्या चल रहा था उसका वर्णन करो, वो बताओ। तो बाबा ने कहा सारा खेल 10-15 मिनट का था, एक युद्ध चल रही थी अंदर, और मैं जैसे कोई मल्ल युद्ध हो रहा है और मैं बैठकर देख रहा हूं, मैं देख रहा था उस खेल को, उसमें युद्ध चल रहा था, एक तरफ कर्म भोग था, एक तरफ योग बल था, कर्म भोग अपनी तरफ खींच रहा था, योग बल अपनी तरफ खींच रहा था। ये बाबा अपनी स्थिति वर्णन कर रहे हैं, ये बाबा के मुख से बाप की स्थिति का विवरण है। ये लड़ाई चालू थी, कभी इसका फोर्सफुल था, कभी उसका फोर्सफुल था, और एक समय आया कि कर्म भोग का जो फोर्स था वह निर्बल हो गया और शरीर का दर्द समाप्त हो गया और योग बल की विजय होगी, और उसके बाद 3 चीजों का अनुभव हुआ। सबसे पहला, जैसे शिव बाबा बुला रहा है आ जाओ, अब तुम्हारा काम पूरा हुआ यहां का, अब इस देह से परे चलो। दूसरा अनुभव था, सभी बच्चों की याद थी, विशेष किसी की याद नहीं थी, शुद्ध मोह था, विशुद्ध स्नेह था, यह संकल्प नहीं था कि किसी से छुट्टी नहीं ली, ऐसे ही जा रहा हूं, परंतु ऐसी अवस्था थी कि सबकी याद है, निरसंकल्प स्थिति थी। यह दूसरा अनुभव। और तीसरा अनुभव, जैसे आत्मा अपने शरीर से, अंगों से शक्ति को छोड़ रही है, भा भा का सन्नाटा था, डेड साइलेंस था, कोई व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है उसको क्या अनुभव होता है, ये शायद मनुष्य इतिहास में किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बताने वाला ही चला गया, कौन बताएगा, यहां ब्रह्मा बता रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि मुझे क्या हुआ, क्या अवस्था थी मेरी, भा भा का सन्नाटा था, जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल रही थी, एक एक अंग से शक्तियों को छोड़ रही थी और मैं आत्मा निकलकर बाहर जा रही थी। ये अनुभव था शरीर छोड़ने का। तो बाबा व्यक्त हो गए 69 में, 70 में मीटिंग हुई, 70 में सोचा गया, 71 में सोचा गया कि विदेश की सेवा आरंभ हो। 7-8 भाई लंदन गए, भाई बहने, कोई सिंधी परिवार से निमंत्रण आया, सेवा केंद्र की स्थापना हुई और फिर धीरे धीरे लंदन, हांगकांग, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया विस्तार हुआ सेवाओं का। जो बाबा ने कहा था तुम्हें एक एक देश में जाना होगा और फिर यहां से सेवाओं का विस्तार। तो यह थी यज्ञ की कहानी 18 जनवरी से, और उसके बाद में विस्तार हुआ। आज की जो मुरली है वो है 18 जनवरी 1984 की। इसमें बाबा ने 18 बातें बताई है, 18 जनवरी की 18 पॉइंट्स। तो एक एक करके सारी पॉइंट्स हम लेंगे। सबसे पहले कौन किससे मिलने आया है, क्या कहा? मधुबन वाले बाबा कहाँ आए हैं? मधुबन में आए हैं। सुंदर वर्णन किया है। कोई ये ना सोचे कि हम जो योग करते हैं, पता नहीं मेरी आवाज बाबा तक जाती है या नहीं, पता नहीं उसको पता भी है कि मैं इस यज्ञ में हूं, क्या उसको पता भी है कि मैं यहां हूं और ये मेरा डिपार्टमेंट है, क्या उसको ये भी पता है ये मेरा घर है। 6 प्रकार की आवाजें बाप तक आती है। स्नेही बच्चों के स्नेह के गीत, जिस जिसको बाप से स्नेह है और यदि उसके दिल से स्नेह के गीत निकल रहे हैं तो वो गीत उस तक पहुंच रहे हैं। जो जो स्नेही होगा उस स्नेही आत्मा के स्नेह के गीत उस तक पहुंचेंगे। दूसरे इससे थोड़े आगे है वो, जो बाप समान है और जो निरंतर मिलन की अवस्था में है और जो निरंतर मिलन मना रहे हैं, उस उन आत्माओं के मिलन के गीत भी उस तक पहुंच रहे हैं। तीसरे कौन से? संपर्क वाली आत्माओं के गीत उस तक पहुंच रहे, आवाज उस तक पहुंच रही है, उमंग उत्साह उस तक पहुंच रहे, तो क्या हमारे गीत उस तक नहीं पहुंचेंगे? जहां बाबा कह रहे संपर्क वालों का भी आवाज उस तक पहुंच रहा है, जिनको भगवान का पूरा परिचय नहीं और खाली मुख से बाबा बाबा कहते हैं, उनके आवाज और उनका उमंग और उनका उत्साह भगवान तक पहुंच रहा है, तो क्या हमारा आवाज हमारे गीत उस तक नहीं पहुंचेंगे? फिर सर्व आत्माओं के, सर्व ब्राह्मणों के स्नेह के पुष्प उस तक पहुंच रहे, सर्व आत्माओं के, चाहे स्नेही हो या न हो। उसके बाद बांधेली, कौन से गीत गा रही है वो? उलाना के मीठे गीत, वो भी पहुंच रहे उस तक। उसके बाद विद्यवल विदेशी, देश विदेश की जो आत्माएं हैं उनके क्या पहुंच रहा है उस तक? दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञाएं, उनकी प्रतिज्ञाएं भी उस तक पहुंच रही है। तो ये सब चीजें उस तक पहुंच रही है, अर्थात जब जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे, जब जब हम शक्तिशाली संकल्प करेंगे, जब जब हम समान बनने का संकल्प करेंगे, वो संकल्प, वो श्रेष्ठ संकल्प, ऐसी संकल्पवान आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प उस तक पहुंचेंगे। तो उत्तर मिल गया ना? कि क्या वो मुझे जानता है या नहीं, सब उस तक पहुंच रहा है और रिटर्न में उसने चार वरदान दे दिए। कौन से? बाप दादा का रिस्पॉन्ड क्या है? सदा के स्नेही बहो बाबा के, भगवान वरदान दे रहा है कि तुम मेरे स्नेही बहो। दूसरा, समर्थ समान भव, जो स्नेही आत्मा है उनको वरदान स्नेही का, जो समर्थ है बाप समान है उनको फिर उनको वरदान समर्थ समान का, जो संपर्क वाले हैं उनको वरदान उमंग उत्साह का, उमंग उत्साह से समान भव का, जो बांधेली है उनको वर्णन उनके लिए वरदान लगन की अग्नि से, लगनाग बन जाए, प्रेम ज्वाला बन जाए और वो ज्वाला उस लगन की अग्नि से बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। प्रेम की अग्नि ऐसी प्रज्वलित करो कि चेतना के सारे बंधन कट जाए, भस्म हो जाए। बंधन डालने वाले क्या हो जाएंगे? भविष्यवाणी कर दी है, प्रभु स्नेह के बंधन में बंध जाएंगे, परमात्म प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। तो ये सबसे पहली पॉइंट, 18 जनवरी की मुरली, 18 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट इस दिन का वर्णन है। तो ये दिन है समर्थ बनने का, ये दिन है स्नेही बनने का, ये दिन है सभी बंधनों को समाप्त करने का। दूसरा क्या कहा? दूसरा, तुम्हारे जो मोती है स्नेह के वो क्या बन जाते हैं? हीरा बन जाते हैं। तुम्हारे मोती वो क्या कर देता है? हीरा बना देता है। जो जो स्नेह के मोती आंखों से झरझर गिरेंगे वो मोती बन जाएंगे, वो हीरा बन जाएंगे। क्या ऐसे स्नेह के मोती, ऐसे अश्रुधारा हमारी आंखों से बहती है? प्रेम के आंसू, विशुद्ध स्नेह के आंसू, क्यों हम इतना लेट आए इस भाव से निकलने वाले आंसू, क्यों हम पहले नहीं आ गए? ये आंसू, क्यों हम वैसा प्यार क्यों नहीं कर सकते जैसा दादियों का था? इसलिए आंसू, क्यों पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो रहा? इसलिए आंसू, क्यों उससे प्यार सर्वोपरि नहीं है? इसलिए आंसू, क्यों उससे इतनी दूरी? इसलिए आंसू। तीसरा, समर्थी दिवस। कौन सा दिन है ये? समर्थी दिवस, शक्तिशाली बनने का दिवस, पावरफुल बनने का दिवस, सभी कमजोरियों को समाप्त करने का दिवस, ऐसा समर्थी दिवस, यह व्यक्त दिवस हो। चौथा, तत्त्वम का वरदान साकार करने का दिवस। जैसे ब्रह्मा के सामने विष्णु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु ने कहा अहम विष्णु ततत्वम, वैसे ब्रह्मा हमारे सामने प्रकट हो रहा है और कह रहा है ततत्वम, मेरे समान बन जाओ, मास्टर ब्रह्मा बन जाओ। ततत्वम का साकार करने का दिवस, यह चौथा। पांचवा, विल की पावर और पावर की विल, शक्तियों की विल और विल की शक्ति और विल की पावर, सारी शक्तियों को विल के रूप में स्वीकार करना। जैसे बाबा ने दादी को सारी शक्तियां दे दी, वैसे अमृत वेला ये अभ्यास करना कि हमने अपना हाथ बाबा के हाथों में दे दिया है। और बाबा ने अपनी समस्त ईश्वरीय शक्तियां मुझे दे दी है। यदि कोई बीमारी है तो ये सोचना कि भगवान के द्वारा मुझे सभी उपचारक शक्तियां प्राप्त हो गई है, हीलिंग एनर्जी, हीलिंग पावर, हीलिंग ऊर्जा मुझ में आ गई है, अब मैं स्वयं ही डिवाइन हीलर बन गया हूं। यदि शरीर में कोई रोग है, संताप है जीवन में कोई, तो वो सारा रोग, वो सारा संताप इन ईश्वरीय शक्तियों के द्वारा नष्ट हो रहा है। विल में हमको क्या मिल गई? शक्तियां। और शक्तियों में शक्ति, विल में शक्ति, विल पावर, विल की पावर, दोनों शक्ति है, पावर की विल और विल की पावर। इच्छा शक्ति मिल गई है, विल पावर मिल गई है, दृढ़ संकल्प की शक्ति मिल गई है। जहां पर हिम्मत है वहां मदद है, जहां निश्चय है वहां विजय है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। इस वाक्य को अपनी डायरी में लिख के रखना है, जहां हिम्मत है वहां मदद है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है, और जहां निश्चय है वहां विजय है। तो पांचवी पॉइंट है विल पावर, विल की पावर और पावर की विल। छठवी पॉइंट, बाप दादा, बाप स्वयं बैकबोन बन गया और क्या किया उसने, बच्चों को मैदान में रखा। बाप बैकबोन बन गया, बच्चों को वरदान मैदान में रखा। हम बैकबोन बन जाए और दूसरों को आगे कर दे, सब कुछ मैं ही करूं ये नहीं, हम क्या हो जाए, बैकबोन बन जाए और दूसरों को आगे कर दे। सेवाओं में हम आगे, और जब प्रशंसा हो और प्रस्तुति हो और जब एक्नॉलेजमेंट हो और जब रिकॉग्निशन हो तो दूसरे आगे। स्वयं बैकबोन बनकर बच्चों को मैदान में रख दिया। सिक्स्थ, सेवेंथ, कर्मातीत बनने का दिवस, ब्रह्मा के कर्मातीत बनने का दिवस। जैसे वो कर्मातीत बना और उसने अपनी तीन अवस्थाएं बताई, उन्हीं तीन अवस्थाओं का अनुभव रोज अमृत वेले करना है। पहला बताया, बाबा मुझे भुला रहा है, जुहो जुहो जुहो, ये धरती तुम्हारा घर नहीं है, तुम अजनबी हो, पराया देश है ये, मुझे वापस जाना है। कोई अज्ञात हरियाली पुकार रही है, कोई दूर देश मुझे पुकार रहा है, कुछ हिमाच्छादित शिखर मुझे पुकार रहे हैं, कल कल निराद करते कुछ अव्यक्त झरने पुकार रहे हैं, कोई खुला आकाश निमंत्रण दे रहा है, मुझे जाना है। ये अनुभव याद है, परंतु विशुद्ध स्नेह है, किसी की विशेष याद नहीं है। और तीसरा, आत्मा शरीर से शक्तियां छोड़ रही है, कर्मेंद्रिया नीचे, मैं आत्मा ऊपर, देह मिट्टी, देह मृत, देह विनाश, देह तत्व, तत्व में विलीन, मैं आत्मा ऊपर, ब्रह्मा के कर्मातीत बनने का दिवस। आठवां, विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा, तीव्र गति से आरंभ होने का दिवस। विश्व कल्याण, विश्व परिक्रमा का आरंभ, विश्व परिक्रमा करनी है हर दिन। हर दिन क्या करना है? इस वसुंधरा की परिक्रमा करना है, फरिश्ता स्वरूप धारण करना, एक एक खंड पर जाना, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एक एक खंड के ऊपर जाना और आत्माओं का आह्वान करना, आ जाओ, कोई भी देश ना छूटने पाए, सब हमारे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। एक एक आत्मा से संपर्क करना है, एक एक आत्मा से तार जोड़नी है, एक एक आत्मा की तार उससे जुड़वानी है। ये जिम्मेवारी तुम्हारी है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास जितना ज्यादा अधिकार, जितनी ज्यादा शक्ति, उसका जिम्मेवारी भी उतनी अधिक होगी। विश्व परिक्रमा नौवा दर्पण। तुम दर्पण बन जाओ जिसमें बाप दादा प्रख्यात हो। क्या ऐसा दर्पण मैं बनाऊं? ऐसा मिरर, ऐसा आईना, ऐसा आरसी, ऐसा शीश, ऐसा एक महल मैं बन जाऊं जिसमें वो दिखाई दे। दर्पण बन जाना। और दसवां, जगत के बच्चों को क्या करना है? जगत पिता का परिचय, ये काम हमारा है। चैन से सो नहीं सकेंगे तुम, आगे कहा है बाबा ने, जब तक संदेश ना दे दो। यहां से जा रहे हो लाने के लिए, महान सेवाओं के लिए तुम्हें निमित्त बनना है। आत्माएं दुखी है, उदास है, तड़प रही है, कलयुग का प्रभाव है, विकारों का ग्रहण लगा है। जीवन नैया गर्त में है, उन्हें उभारना है, उनकी मदद करनी है। 11, 12 और 13 ये तीन पॉइंट मधुबन से संबंधित है। 11वां शांति स्तंभ, 12वां बाबा का कमरा और 13वां झोपड़ी। शांति स्तंभ कौन है? वो स्थूल शांति स्तंभ है। तुम चैतन्य स्थान शांति स्तंभ हो, तुम ज्ञान स्तंभ हो। जैसे वो स्तंभ अचल अडोल है, वैसे तुम अचल अडोल बन जाओ। जैसे उस स्तंभ के सम्मुख तुम खड़े रहते हो, बाप तुम चैतन्य स्तंभ के सामने खड़ा रहता है। जैसे तुम उस स्तंभ की परिक्रमा लगाते हो, बाप दादा तुम्हारी परिक्रमा लगाते हैं। मैं स्वयं शांति स्तंभ हूं, मैं स्वयं ज्ञान स्तंभ हूं, मैं स्वयं शक्ति स्तंभ हूं, मैं स्वयं पवित्रता का स्तंभ हूं। वो स्तंभ तुम्हारा यादगार है, तुम्हारी स्थिति का यादगार है। तो जब जब शांति स्तंभ की परिक्रमा करो, सोचो साथ साथ बाबा मेरी परिक्रमा कर रहा है। तुम शांति स्तंभ के सामने खड़े हो तो बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। किसी एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था, तुम दर्पण के सम्मुख आए हो, तुम दर्पण के सम्मुख आए हो। बाप दर्पण है, छिप नहीं सकेगा कुछ भी। 12वीं पॉइंट, तुम बाबा के कमरे में जाते हो, बाप तुम्हारे दिल के कमरे में प्रवेश करते हैं। क्या करने? दिल की बातें करने के लिए। तुम अपने दिल की बातें बाबा के सामने करते हो, बाप अपने दिल की बातें तुम्हारे दिल के कमरे के अंदर घुसकर प्रवेश कर करते हैं। हमने प्रवेश इधर किया और उसने प्रवेश उधर किया, दरवाजे पर ही खड़ा है वो। हम अंदर गए और वो हमारे अंदर गए। हमारा कमरे में घुसना और उसका दिल में घुसना साथ साथ ही होता है। कौन घुसता? जिसका स्नेह ज्यादा। किसका स्नेह ज्यादा? कंपटीशन है। रेडी स्टडी एंड गो। बाप भी तैयार है, पर घुसने देना। और कोई अंदर बैठा होगा तो वो नहीं घुसेगा, उसको जगह खाली चाहिए और बहुत शुद्ध चाहिए और बहुत पवित्र स्थान पर वो बैठता है। नहीं तो नटखट तेरा लाल, यशोदा नटखट तेरा लाल, इधर उधर चला जाएगा। उसको बांध के रखना पड़ता है स्नेह की रस्सी से। 13वां झोपड़ी क्या है? दिलरुबा और दिलबर का यादगार। वो वहां बैठा है और क्या सुनता है? दिलरुबा क्या बोल रही है? क्या सुनता है? ताल, सांस सुनता है, स्नेह के, शक्ति के, आनंद के, प्रेम के। तुम क्या क्या रुरियान करते हो वो सुनता है। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर आ जाना, व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाना, बाप समान बनने का संकल्प हो तो कमरे में आ जाना, उदास हो जाओ तो बाप से रुरियान करने। कितने बजे कितने बजे आ जाना झोपड़ी में? 2 बजे। उदासी खो जाएगी और जो उदास नहीं है वो उमंग से भर जाएंगे, दूसरों की उदासी दूर करने का सामर्थ्य उनमें आ जाएगा। 14वीं पॉइंट, स्मृति सो समर्थि दिवस। शक्तिशाली बनने की विधि है स्मृति। युद्ध नहीं करते बैठना विकारों से, क्योंकि विकार तब प्रवेश होते हैं जब हम विस्मृत हो जाते हैं, जब हम बेहोश हो जाते हैं। खेल होश और बेहोशी का है। जो होश में है वो कभी भी नहीं गिरेगा। हाँ, जब अगर बेहोशी आ जाए तो गिरने की संभावना है। जब जब हम गिरे हैं, जब जब विकारों के अधीन हुए, जब जब कमजोरी ने प्रवेश किया है, जब जब कोई खामी इम्परफेक्शन, जब जब कोई गलती हुई है, वो गलती बेहोशी के क्षण में हुई है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा, अंधेरा तब होता है जब सूर्यास्त होता है। सोचो यदि सूर्य निरंतर उदित रहे, आकाश में रहे, तो अंधेरा कैसा? ज्ञान सूर्य तुम्हारे हृदय में निरंतर शिखर पर हो, आसमान में हो, तो अंधेरा होगा ही नहीं। क्योंकि अंधेरा हुआ अर्थात गलती, अंधेरा हुआ अर्थात ग्रहचारी, अंधेरा हुआ अर्थात विकार, पाप, विकर्म, कुकर्म, गफलत और फिर पश्चाताप, फिर प्रायश्चित, फिर आंसू, फिर बाबा आई एम सॉरी। सॉरी भी नहीं कहते, परसों की मुरली में था, गलती बड़ी बड़ी करते हैं, इतना तो कहो आई एम सॉरी, उतना भी नहीं कहते। कौन कौन कहता है रोज आप बाबा से आई एम सॉरी? सोच समझ के हाथ खड़ा करना, क्योंकि इसके पीछे कुछ दूसरे अर्थ छिपे हुए हैं। जो रोज सॉरी करते हैं अर्थात गलतियों का सिलसिला जारी है। रोज गलती करो और रोज बाबा से कहो सॉरी। स्मृति को शक्तिशाली बनाना है। दुरुस्त याददाश्त, शक्तिशाली स्मृति, खोट ना हो स्मृति में। 15वीं पॉइंट, सेवा के जिम्मेवारी की ताज पोशी। सेवा के जिम्मेवारी की ताज पोशी। जिम्मेवारी समझना स्वयं, जिम्मेवार स्वयं समझना स्वयं को। हमें बहुत महान कार्य करने हैं, हम महान कार्य करने के लिए अवतरित हुए। अव्यक्त महावाक्य है बाबा की, वहां पर एक अवतार आता है तो क्रांति कर देता है। जब इतने अवतार एक साथ प्रकट होंगे तो कैसी क्रांति होगी संसार में। मौन क्रांति कर देनी है। ऐसा विप्लव, ऐसा तूफान, ऐसा सुनामी आ जाए मौन का, परमात्मा प्रेम का, कि संसार उसमें डूब जाए। ऐसा ईश्वरीय स्नेह का सैलाब। तो जिम्मेवारी की ताजपोशी। 16वीं पॉइंट, बच्चे आगे। 16वीं पॉइंट, तिलक, स्मृति से समर्थि का तिलक। तिलक लगा लेना है। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ज्ञान चंदन घिसना है तब कहीं जाकर वो तिलक देगा, राजा का। 17वीं पॉइंट, बच्चे आगे बाप पीछे, ये साकार करने का दिवस। दूसरों को आगे करना बहुत बड़ी महानता है, श्रेष्ठता है। लास्ट पॉइंट 18वां, बाबा हर्षित होते हैं, बाबा बधाई देते हैं और वरदान देते हैं। एक वरदान यहां पर दिया, कौन सा? सहज विधि से वृद्धि को पाते रहो। सहज विधि से वृद्धि को पाते रहो। बच्चे कहते हैं बाबा से क्या, और फिर बाप क्या कहते हैं रिटर्न में, क्या कमाल है बाबा आपकी, निरंतर क्या कहते रहे बाबा से, कमाल है, कमाल ही कमाल हो रहा है जीवन में, कमाल है आपकी, और वो क्या कहे, कमाल है तुम्हारी, एक कमाल इधर से एक कमाल इधर से, वो कहे कमाल तुम्हारी, हम कहे कमाल तुम्हारी, वो कहे कमाल तुम्हारी, छोटा बेटी कमाल की। तो ऐसे ही है। और बाबा ने और एक चीज कही विदेशियों से, जो यहां है वो प्यासे है, समीप वाले और दूर वाले आ गए। तो 18 जनवरी की ये मुरली, 18 पॉइंट्स फिर से रिवाइज करेंगे, अब पीछे से रिवाइज करेंगे, 18वीं पॉइंट कमाल, 18वीं पॉइंट कमाल, 18वीं पॉइंट वरदान सहज विधि से वृद्धि को पाते रहो, 17वीं पॉइंट बच्चे आगे बाप पीछे, अगला ताज पोशी का दिवस, सेवा की जिम्मेवारी की ताजपोशी का दिवस, अगला स्मृति सो समर्थि स्वरूप का दिवस, अगला अगला 14वां स्मृति सो समर्थि दिवस, 14वां 13वां झोपड़ी, उसके बाद में बाबा का कमरा, उसके बाद में 11वां शांति स्तंभ, 10वां जगत पिता, जगत के बच्चों को जगत का परिचय देना, 9वां दर्पण बन जाओ तुम, 8वां विश्व परिक्रमा और विश्व कल्याण, 7वां बाप के कर्मातीत होने का दिवस, 6वां बाप बैकबोन और बच्चे विश्व के मैदान में, 5वां विल पावर, 4था ततत्वम का वरदान, तीसरा स्मृति सो समृद्धि, और दूसरा स्नेह की मोती हीरा, और पहला बहुत सारी आवाजें बाबा ने सुनी और बाबा ने उसका रिस्पॉन्ड दिया, ऐसे समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प धारी आत्माओं को ऐसे दिलरुबा की, दिलवर की दिलरुबा बन, भिन्न भिन्न सास सुनाने वाली आत्माओं को ऐसे कैसे बोलो, बहुत सारी बातें, ऐसे ऐसे सर्व शक्तियों की विल से, एक आगे बहुत सुंदर वाक्य है, सर्व शक्तियों की विल से विल पावर में रहने वाली आत्माओं को ऐसे 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 स्तंभ के समान अचल अडोल रहने वाली आत्माओं को ऐसे सदा मिलन मनाने वाली देश विदेश की भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं को स्नेह के पुष्पों सहित बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।